हरे कृष्णा श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 4 वर्स नंबर 32 एंड 33। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्राह्मणो मुखे कर्मजान विद्धितान सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसि एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्राह्मणो मुखे कर्मजान विद्धितान सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसि एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्राह्मणो मुखे कर्मजान विद्धितान सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसि एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्राह्मणो मुखे कर्मजान विद्धितान सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसि एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्राह्मणो मुखे कर्मजान विद्धितान सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसि। शब्दों का अर्थ एवं बहुविधा यज्ञ, एवं मन इस प्रकार, बहुविधा विविध प्रकार के यज्ञ अर्थात यज्ञ, वितता ब्राह्मणो मुखे, वितता मतलब से पहले हुए हैं ब्राह्मण अर्थात वेदों के मुखे अर्थात मुख में, कर्मजान विद्धितान सर्वान, कर्मजान मतलब कर्म से उत्पन्न, विद्धि मतलब जानो, तान सर्वान, तान मन उन सर्वान यानी सबको, एवं इस प्रकार ज्ञात्वा जानकर विमोक्ष से अर्थात मुक्त हो जाओगे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। अनुवाद, ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि वेदों में कर्ता भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। चूंकि लोग देहात्म बुद्धि में लीन हैं, अतः इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य उन्हें अपने शरीर, मन अथवा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके, किंतु देह से मुक्त होने के लिए ही इन सब का विधान है। इसी की पुष्टि यहाँ पर भगवान ने अपने श्री मुख से की है। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साकृजातं सहगणरघुनाथन् वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्रीराधा कृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पति गोपीश गोपीका कांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनम गारंगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुति देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरु भयस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता माते की जय हो। भगवान श्री कृष्ण ने विभिन्न प्रकार के यज्ञों के विषय में बताया और समस्त यज्ञों के विषय में बताने के बाद भगवान ने बताया कि जो यज्ञ करते हैं और जो यज्ञ करने के अर्थ को जानते हैं वो तीन फल प्राप्त करते हैं। श्लोक नंबर 30 में भगवान ने कहा सर्वे प्रीति यज्ञ विदो यज्ञक्ष पित कर्मशा यज्ञ शिष्टा मृत भुजो यान्ते ब्रह्म सनातन। जो यज्ञ को जानते हैं उन्हें तीन प्रकार के फल मिलते हैं। एक तो क्या होता है यज्ञ क्षपित कर्मशा अपराधों का नष्ट हो जाते हैं, जितने भी पाप कर्म होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, शुद्धिकरण होता है। और दूसरा यज्ञ शिष्टामृतमुजो अर्थात यज्ञ करने से उसे आनंद की प्राप्ति होती है और यान्ति ब्रह्म सनातन और सनातन धाम को प्राप्त होते हैं। और आगे भगवान ने कहा अगर यज्ञ नहीं करेंगे तो नायम लोकोस्य यज्ञस्य कुतोन्य कुरु सत्तम। अगर यज्ञ नहीं करेंगे तो इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकते तो कुतोन्य कुरु सत्तम दूसरे किसी है ना लोक में जाकर कैसे संतुष्ट हो सकते हो। जब उस लोक में भी आप संतुष्ट नहीं होगे, यज्ञ नहीं करोगे, खाली इंद्रिय तृप्ति करके कोई नहीं संतुष्ट हो सकता है। तो भगवान आगे आज इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं एवं बहुविधा यज्ञ एवं मन इस प्रकार। इस प्रकार तो किस प्रकार, जैसे अभी बहुत सारे भगवान ने यज्ञों के स्टाइल्स बताए ना कि कोई द्रव्य यज्ञ होता है, कोई ज्ञान यज्ञ होता है, कोई है ना ब्रह्मचर्य यज्ञ होता है, गृहस्थ यज्ञ होता है। अलग अलग यज्ञों के विषय में बताया भगवान ने, कोई प्राणायाम यज्ञ होता है, पतंजलि जिसके अंदर है ना श्वास जो होते हैं उनकी परिक्रिया को संयमित किया जाता है। तो बहुविधा मतलब विविध प्रकार के, बहुत ही अलग अलग टाइप के यज्ञ मैंने बताए आपको एवं बहुविधा यज्ञ। ये बहुत प्रकार के जो यज्ञ हैं, रितता यानी फैले हुए, कहाँ पर, ये मैंने कैसे बताए, अपनी तरफ से नहीं बताए, ब्राह्मणामुखे, ब्राह्मणों का क्या मतलब होता है, वेद, यानी कि ये वेदों से पता चला है हमें। ब्रह्म जो होता है ना, उसका अलग अलग मतलब होता है, एक ब्राह्मण भी होता है और एक ब्रह्म वो भी होता है जो नहीं होता है, भगवान का एक फॉर्म होता है ब्रह्म, निराकार ब्रह्म वो भी होता है। और यहाँ पर जो ब्राह्मणोमुखी लिखा हुआ है, यानी वेदों में ये सब बताए गए हैं। और आगे कर्म जान विधि दान सर्वान, कर्म जान का मतलब होता है कि ये देखो, जो भी आप कर्म, जो भी आप वेद के अनुसार जो यज्ञ करोगे ना, यानी कि कुछ न कुछ उसके लिए आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप वो कार्य, कोई भी कार्य से लेस होकर कोई भी आप यज्ञ नहीं कर सकते। यज्ञ करने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। कर्म जान विधि दान सर्वान, आप ये सारे यज्ञ जो हैं वो कर्मों से होते हैं। मतलब ये सारे जो यज्ञ हैं वो वेदों से आ रहे हैं। और वेदों का उद्देश्य क्या है? वेदों का उद्देश्य भगवान बताते हैं चैप्टर नंबर 15, टेक्स्ट नंबर 15 में, वेदैश्च सर्वे अहम् एव वेद्यो, कि जो इतने सारे वेद हैं उनमें यदि कुछ वास्तव में जानने के योग्य है और यदि वेदों को अध्ययन करने के बाद कुछ लक्ष्य है तो अहम् एव, कृष्ण कहते हैं, एव का मतलब होता है निश्चित रूप से, खाली खाली कृष्ण, यानी भगवान कहते हैं वेदों का रचयिता मैं हूँ। वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, कि वेदों का रचयिता मैं हूँ, वेदों को संकलित करने वाला मैं हूँ, वेदों का अध्ययन करने वाला मैं हूँ, वेदों को बताने वाला मैं हूँ, वेदों के जरिए जानने वाला भी मैं हूँ, वेदों को जानने वाला भी मैं हूँ और वेदों का लक्ष्य भी मैं हूँ। यानी कि वेद अगर कुछ है तो भगवान को प्राप्त करने का एक तरीका है। तो वेदों में जो विभिन्न प्रकार के यज्ञ हैं वो सारे कर्म करके, मतलब उनको यदि हम उसके वास्तविक अंतरंग मकसद को समझें अगर उसको, तो फिर क्या है, भगवान कहते हैं फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप कोई भी कार्य कर रहे हो, कोई भी यज्ञ कर रहे हो तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हो। और इस तरह से क्या होगा, ज्ञात्वा विमोक्षते, एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे, एवं मन इस प्रकार आप यदि जान जाओगे तो ज्ञात्वा विमोक्षसे, ये जानकर आप मुक्त हो जाओगे। और कर्म करने इसका मतलब ये कि भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं, कर्म जान विद्यतां सर्वं, कि आपको कर्म तो फिर भी करना है, ऐसा नहीं है कि आप कर्म छोड़कर विमोक्षसे। भगवान ने कहा कर्म जान विद्यतां सर्वं एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे, कि कर्म करना है और कर्म को एक यज्ञ समझकर करना है। यज्ञ का मतलब होता है भगवान को प्रसन्न करना, और ये वेदों में, वेदों का जो है वही अंतरंग अभिप्राय है, और ऐसा करने से ही आप संतुष्ट हो सकते हो, सुखी हो सकते हो। और ऐसा पहले वाले श्लोक में क्या बताया भगवान ने, कि इस श्लोक में भी सुख मिलेगा, दूसरे लोग में सुख मिलेगा। यानी पहले भगवान ने 30 में बताया कि आपको शुद्धिकरण होगा, आनंद प्राप्त होगा और सनातन धाम भी प्राप्त होगा, और दूसरे में कहा कि इस लोक में सुख नहीं मिलेगा अगर यज्ञ नहीं करोगे, और दूसरे लोक में तो सुख मिलने का कोई पॉसिबल ही नहीं है, कोई संभावना ही नहीं है। और आज भगवान बता रहे कि वास्तव में इस लोक में भी सुख मिलेगा अगर यज्ञ करेंगे वेदों के अनुसार, दूसरे लोक में भी सुख मिलेगा, और फिर विमोक्ष से आप भगवान के धाम में चले जाओगे, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाओगे। अनुवाद ने क्या बताया कि ये विभिन्न प्रकार के जो यज्ञ हैं वो वेद सम्मत है, यानी वेदों से आए हैं, ब्राह्मणों मुखे, सभी प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। और इन्हें इस रूप में जानने पर, यानी किस रूप में जानने पर, कि ये वेदों से आए हैं और इसमें हमें कर्म करना है। कर्म क्यों करना है? भगवान की प्रसन्नता के लिए। और जो भी कार्य आप इस तरह ये सोचकर करोगे, इस प्रकार जानने से, तो मोक्ष को प्राप्त करोगे या मुक्त हो जाओगे। और श्रील प्रभुपाद ने ये बताया कि क्योंकि लोग, जितने भी लोग हैं वो देहात्म बुद्धि में हैं, उनको अभी तक ये बात का रियलाइजेशन नहीं हुआ है कि मैं आत्मा हूँ और मेरा यह जीवन, जो मनुष्य जीवन मुझे मिला है, वो मुझे मेरे वास्तविक अस्तित्व को जानकर मुझे भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है, तो मैं इसी प्रकार से मोक्ष के लिए या कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए कार्य करूं। तो क्योंकि वो जीव जिस जिस लेवल पर होता है, जैसे जैसे उसकी बुद्धि होती है और जैसे जैसे उसका मन की वृत्ति होती है, उसके अनुसार वो कार्य करना चाहता है। ऐसा नहीं करना चाहता कि डायरेक्ट से हर कोई भगवान, आप किसी को बोलो, इधर बहुत सारे बैठे हो ना लोग, आप किसी को बोलो आप मुक्ति चाहते हो तो बोलेंगे, उनको अपनी प्रेजेंट लाइफ इतना ज्यादा डिस्टर्ब कर रही होती है तो बोलेंगे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती हूँ, कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम, जैसे कोई गरीब है, किसी का ना कारोबार नहीं चल रहा है, किसी के बच्चे बीमार हैं, किसी को घर नहीं मिल रहा, या कोई भी इस तरह के, किसी की बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, या किसी के घर में बहुत ज्यादा बीमारी है या धन दौलत की कमी है, तो इस तरह क्या होगा कि उनको ये प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट लगती है और वो भगवान के सामने भी जाकर यही कहेंगे कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो, मुझे जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति दिलाकर आपके श्री चरणों की सेवा प्रदान करो। ऐसी बुद्धि जो है वो हर किसी को प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि उनकी इच्छा, जीव की अपनी इच्छा है कि वो क्या मांगता है भगवान से, और भगवान जो है वो क्या कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजामि हम, जैसे जिस भाव से आप मेरी शरण में आओगे मैं वो आपको प्रोवाइड करूंगा। तो उसी लिए वेदों में अलग अलग टाइप के यज्ञ लिखे हुए हैं कि आपको ये चाहिए तो ये करो, ये चाहिए तो ये चलो ये, क्योंकि सबका मेंटेलिटी अलग होती है ना, इसलिए वेदों में कर्ता भेद के अनुसार, यानी कि जो करने वाला है उसके अनुसार अलग अलग टाइप के यज्ञ बताए गए हैं। लेकिन देह से मुक्त होने पर, यानी जब किसी को ये पता चल जाए कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, फिर उसको इन सब यज्ञों की आवश्यकता नहीं होती है कि ये करो, उसको प्रसन्न करो, उस देवी देवता को प्रसन्न करो, या फिर यहाँ पर उसको क्या करना है, उसको देहात्म बुद्धि से रिलेटेड यह सब यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, उसको उत्तम यज्ञ करने की आवश्यकता है। और उत्तम यज्ञ कौन सा है, सबसे ज्यादा उत्तम यज्ञ कौन सा है, वो भगवान अभी नेक्स्ट श्लोक में बताएंगे। श्लोक नंबर 33 में भगवान कहते हैं, श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञा ज्ञानयज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परि समाप्यते श्रेयान् द्रव्यय श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परि समाप्यते श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परि समाप्यते श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परि समाप्यते श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परि समाप्यते श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परि समाप्यते शब्दों का अर्थ श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् श्रेयान् मतलब श्रेष्ठ है द्रव्य मयात यानी जो संपत्ति का धन दौलत का यज्ञ होता है, यज्ञात यज्ञ से। ज्ञान यज्ञ परंतप, ज्ञान यज्ञ अर्थात ज्ञान यज्ञ, परंतप हे शत्रुओं को दंडित करने वाले। सर्वम कर्माखिलम पार्थ, सर्वम मतलब सभी, कर्म अर्थात कार्य, अखिलम पूर्णतः पार्थ हे प्रथापुत्र, ज्ञाने परिसमाप्यते, ज्ञाने अर्थात ज्ञान में, परिसमाप्यते अर्थात समाप्त होते हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद, हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंत तो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में हो जाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, समस्त यज्ञों का यही एक प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वह भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। तो भी इन सारे यज्ञों की विविध क्रियाओं में रहस्य भरा है और मनुष्य को यह रहस्य जान लेना चाहिए। कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप से धारण कर लेते हैं। जब यज्ञकर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाती है तो उसे ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर तक रह जाते हैं और इनसे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण भावनामृत में होता है, जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। ज्ञान की उन्नति बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बना रहता है, किंतु जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंचा दिया जाता है तो ऐसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेते हैं। चेतना भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी कभी कर्म कांड कहलाते हैं और कभी ज्ञान कांड। यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो। मूकं कुरु तु वाचालं पंगुं लंघयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुन्दीनतारणम्। अब भगवान समस्त यज्ञों में जो यज्ञ सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है उसके विषय में बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञ। द्रव्यमयात का मतलब होता है संपत्ति के यज्ञ से श्रेयान कौन है, ज्यादा श्रेष्ठ कौन है? ज्ञान यज्ञ परंतप, ज्ञान यज्ञ जो है वो बाकी जितने भी यज्ञ होते हैं ना, संपत्ति का यज्ञ और दूसरे जितने भी यज्ञ हैं, किसी को दान देना, किसी का ना और स्कूल खुलवाना, ये जो अच्छे अच्छे कार्य जो भी कर रहे हैं उसके उससे ज्यादा ज्ञान यज्ञ जो भगवान कहते हैं, श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप, जो ज्ञान यज्ञ है वो बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है। और सर्वम कर्माखिलम पार्थ, वास्तव में केवल धर्म द्रव्य यज्ञ नहीं, जितने भी कर्माखिलम, कर्माखिलम मतलब जितने भी यज्ञ, पहले भगवान ने क्या कहा, कर्म ज्ञान विद्धि, जितने भी यज्ञ है वो कर्म से उत्पन्न हो रहे हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार के कर्मों से ही हो रहे हैं ना, तो उन सारे सर्वान कर्म, सर्वम कर्माखिलम पार्थ, जितने भी टाइप के कर्म होते हैं, ज्ञाने परि समाप्यते, परिसमाप्यते यानी कि उस ज्ञान के अंदर आके सारे कार्य आके समाप्त हो जाते हैं, यानी कार्य समाप्त हो जाते हैं, मतलब जब आपको ज्ञान हो जाता है कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ किसके लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। क्यों भगवान की प्रसन्नता के लिए करूँ, यह ज्ञान प्राप्त हो जाए, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, आत्मा भगवान का अंश है और आत्मा का एक ही कार्य है कि अपने भगवान को प्रसन्न करे। और यदि ये ज्ञान से कार्य करता है कि मैं ये कार्य केवल कृष्ण को तृप्त करने के लिए कर रहा हूँ, गुरु का आदेश मानकर, क्योंकि मुझे कृष्ण को तृप्त करने का रास्ता नहीं खबर, मैं अपनी ओर से तो रॉन्ग कर सकती, तो गुरु को प्रसन्न करने के लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो मैं कार्य कर रहा हूँ उसमें मेरी कोई इंद्रिय तृप्ति नहीं है। ये ज्ञान, इंद्रिय तृप्ति के लिए मैं कोई भी कार्य करूंगा तो क्या होगा, बंधन का कारण बनेगा। और अगर कोई ये ज्ञान किसी को प्राप्त हो जाता है कि वो यह शरीर नहीं है, आत्मा है, और इस ज्ञाने ज्ञाने परिसमाप्यते, ज्ञान के अंदर आके सर्व कर्म खिलम, कर्म का मतलब कार्य होता है, लेकिन यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि सर्व कर्मा, सर्वम कर्मा खिलम पातके, कर्म वही श्रेष्ठ है जो कि ज्ञान यज्ञ हो। और यदि हम इस ज्ञान से कार्य करेंगे तो सारे कार्यों के फलों का नाश हो जाएगा, समाप्त हो जाएंगे और कभी भी हमें जन्म मरण के चक्कर में फंसना नहीं पड़ेगा। और अनुवाद में श्रील प्रभुपाद ने बताया कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, यानी द्रव्य यज्ञ से, और अंततोगत वह सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। दिव्य ज्ञान का क्या मतलब है, जो इस भौतिक जगत से रिलेटेड नहीं हो, जो आध्यात्मिक ज्ञान हो, यानी आत्मा और परमात्मा का जो रिलेशन है कि मैं भगवान का अंश हूँ, यह दिव्य ज्ञान है। और इसमें आकर संपूर्ण कर्म यज्ञों का अवसान हो जाता है, यानी कर्म जो होते हैं उनके फलों का फल खत्म हो जाते हैं, उनका बंधन खत्म हो जाता है। और श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही सुंदर बात बताई कि जितने भी यज्ञ जीव करता है तो वास्तव में क्या होता है कि वेदों में इन यज्ञों को बताने का मेन मकसद क्या है कि जीव जो है वो अपनी स्थिति को समझे और भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में भगवान की दिव्य सेवा करें। क्योंकि यह संसार में अलग अलग जीवों की, अलग अलग व्यक्तियों की और अलग अलग वस्तुओं की सेवा करना जीव का लक्ष्य नहीं है। जीव का लक्ष्य क्या है, भगवान की सेवा करना। तो इस तरह से यज्ञ के माध्यम से पवित्र होते होते वो आगे बढ़ेगा। और इन सब यज्ञों का, यानी कि जब ये वर्णाश्रम धर्म का पालन होगा, यज्ञ संपन्न होंगे, इंद्रिय बोध और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा कम होगी, तो क्या होगा, जीव के अंदर शुद्धिकरण होगा ना। तो शुद्धिकरण होते होते एक समय ऐसा आएगा कि भौतिक इच्छाएं भी समाप्त हो जाएंगी और वो केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करेगा। शुद्धिकरण करने के बाद फिर क्या होगा, अंत तो गत्वा जीव को ये रियलाइज होगा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मुझे भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करें। तो ये वेदों में कैसे है, क्रमिक लिखा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। तो श्री प्रभुपाद बताते हैं कि ये सारे यज्ञों की विधि क्रियाओं में एक रहस्य है। ये रहस्य क्या है कि इन सब कार्यों से मुझे आगे उन्नति करनी है, आध्यात्मिक में उन्नति करनी है। तो शिला प्रभुपाल जी बहुत ही सुंदर एक बात बता रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य के अंदर, यानी जीव के अंदर जो करता यज्ञ कार्य जो भी कर रहा है, आप चूंकि कार्य कर रहे हो, अच्छा कार्य यदि कर रहे हो तो वो आपकी श्रद्धा के अनुसार अलग रूप धारण कर लेता है। भले आप द्रव्य यज्ञ कर रहे हो, यानी कि किसी को दान दे रहे हो, कुछ कर रहे हो, लेकिन आपकी श्रद्धा के अनुसार कि मैं ये प्रसन्न करना हो, पता नहीं, कभी कभी बोलते हैं बस भगवान ने दिया है तो भगवान की कृपा है हम पर इतना तो हम दे रहे हैं, तो ऐसी कभी श्रद्धा हो जाती है, हमें पता भी नहीं होता, भक्ति के लेवल पर नहीं होते हम, लेकिन फिर भी अच्छी बात कि भाई जो कुछ दिया है भगवान ने तो दिया है, तो अगर हम उनके लिए, तो इस तरह का भी यज्ञ होता है। तो श्री रूपाल जी बोलते हैं कभी कभी क्या होता है, कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न प्रकार के रूप धारण कर लेते हैं। जब यज्ञ कर्ता की श्रद्धा यज्ञ दिव्य यज्ञ के स्तर तक पहुंच जाती है तो उसे ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है। अब देखो, द्रव्य यज्ञ यानी कि जो धन दौलत से यज्ञ करते हैं, यानी धन दौलत किसी को कोई भी धन दौलत से कोई भी सेवा का कार्य करते हैं, ये यज्ञ करते हैं, दान देते हैं, तो अगर किसी किसी को तो बिल्कुल खबर ही नहीं होती है, ज्ञान होता ही नहीं है, बस दे देते हैं, यानी कि उनके सामने उनके पास बहुत सारा धन होता है, दे देते हैं, जरा भी ज्ञान नहीं होता। लेकिन थोड़ा कोई अगर किसी के अंदर ज्ञान होता है कि भाई ये भगवान की संपत्ति है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भले उसके अंदर भक्ति नहीं है, लेकिन ऐसे हृदय के अंदर शुद्धता के विचार आ रहे हैं कि चलो ठीक है, मुझे भगवान ने इस लायक बनाया तभी तो मैं कर रहा हूँ, तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते तो फिर ऐसे अगर कोई ज्ञान से कर रहा है तो अगर वही द्रव्य यज्ञ बगैर ज्ञान की कर रहा है तो फिर उससे ज्यादा बेहतर है ना जो ज्ञान से कर रहा है, क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाते हैं। फिर क्या होता है कि हम ऊपर नहीं उठते, वो याद नहीं आता। भगवान जब याद आता है, भगवान के विषय में बात होती है, भगवान के लिए हृदय में एक स्थान होता है ना, तब हम आगे बढ़ रहे होते, भौतिक स्तर से ऊपर उठ रहे होते हैं। लेकिन जब भगवान की बात बीच में नहीं आती, आध्यात्म की बात नहीं बीच में आती, तो क्या होता है, हम सेंटर में रह जाते हैं और कोई आध्यात्मिक लाभ प्राप्त नहीं होता। बस सेंटर में ये जो धरती मतलब पृथ्वी ये जो स्तर है ना, भौतिक स्तर, उससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और वास्तविक ज्ञान क्या है? वास्तविक ज्ञान है कि कृष्ण को समझना, कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ एक सुप्रीम पर्सनालिटी को प्रसन्न करने के लिए, परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए। और वो परम पुरुष कौन है जिसने ये सब कुछ, अहम सर्वस्य प्रभु, ये जो भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, ये जो भी यज्ञ में कर रहा हूँ वो उसको प्रसन्न करने के लिए जो कि इन सब का भोक्ता है। तो वास्तविक जब यहाँ तक किसी की बुद्धि आ जाती है, भले शुरू में ऐसा नहीं होता लेकिन शुद्धिकरण होते होते वास्तविक ज्ञान यानी कृष्ण भावना प्राप्त हो जाता है, तो ये दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था। इसीलिए क्या कहा यहाँ पर कि ज्ञान यज्ञ जो है वो बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है। सर्व कर्मा खिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्त, ज्ञान के अंदर यानी जब कृष्ण भावनामृत का ज्ञान हो जाता है तो सारे जो हम कार्य करते हैं उनके बंधन समाप्त हो जाते हैं और भगवान के साथ हम भगवान के धाम में ना रह सकते हैं। किंतु जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंचा दिया जाता है तो ऐसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर पर प्राप्त हो जाते, भले भौतिक होता है, जब तक ज्ञान नहीं होता है तो आप वही कार्य करो भले, लेकिन यदि कृष्ण के साथ आपका कोई संबंध आपने नहीं बनाया है, यदि आपको ये नहीं पता है कि कृष्ण कौन है, कि मैं उसको प्रसन्न करने के लिए कार्य करता हूँ, तो फिर तब तक है ना वो ज्ञान जो है वो इनकम्प्लीट है। अगर खाली आप सुप्रीम पर्सनालिटी के लिए भी कर रहे हो, लेकिन अगर आपको सुप्रीम पर्सनालिटी को प्रसन्न करने के भी भाव नहीं है, बस ऐसे ही कर रहे हो, तो वो तो सिर्फ भौतिक धरातल पर है, वो और आगे उठा हुआ है कि आप भगवान के नाम के हिसाब से कर रहे हो। और अगर आप भगवान को जानकर कर रहे हो, भगवान के साथ अपने प्रेम के संबंध को जोड़कर कोई आध्यात्मिक कार्य कर रहे हो, तो वो सर्वोच्च ज्ञान है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने अंत में क्या कहा है, बहुत ही सुंदर और समझने की बात है कि चेतना भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी कभी कर्म कांड कहलाते हैं, कभी कभी ज्ञान कांड कहलाते हैं। कार्य वही होता है। अगर आप कर्म कांड के लेवल पर करते हो, यानी कि ये सोचकर करते हो कि बस मुझे ना अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं करना है, बस किसी की प्रसन्नता के लिए, दिव्य एक परम पुरुष है उसको, सुप्रीम लॉर्ड को प्रसन्न करने के लिए कार्य कर रहे हैं, तो कर्म कांड हो जाता है। और यदि वही कार्य आप भगवान को जानकर करते हो, भगवान कृष्ण के विषय में आप जानते हो, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हो, तो वही कार्य ज्ञान कांड हो जाता है। यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो, यानी संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान क्या है कि भगवान के तीन फेस है, भगवान खाली निराकार नहीं है, भगवान साकार भी है। ज्ञान क्या है, वदन्ति तत्त्वविदस्तत्व यज ज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते, कि आपको ज्ञान भगवान के समस्त फेस के विषय में पता होना चाहिए। भगवान का एक स्वरूप है, भगवान का एक लोक है, भगवान का एक अस्तित्व है, भगवान प्रेम का आदान प्रदान कर सकते हैं, तो उस रूप को, तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं सबसे श्रेष्ठ तो वही है जिसे भगवान के विषय में समस्त ज्ञान हो। तो अर्जुन को भगवान ने ये सब बताया, अब भगवान से इतना सब सुनने के बाद अर्जुन के मन में ऐसा आया कि यदि ज्ञान सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, तो वो कौन सी विधि है जिसके अनुसार हम ना ज्ञान प्राप्त करेंगे? कोई ऐसा तरीका बताइए, आप ऐसे कैसे ज्ञान प्राप्त कर लेंगे? जैसे आपने कितने सारे यज्ञ भी बताया, ब्रह्मचर्य का यज्ञ बताया, कर्मयोग बताया, ज्ञान योग बताया, और मुझे अब ये बताइए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन सा तरीका है जिससे मुझे ज्ञान प्राप्त हो कि मैं क्या करूं। तो फिर भगवान उसे बहुत ही सुंदर एक तरीका बताते हैं जिससे आपको वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है, और भगवान बताएंगे 4.34 हम सबका प्रिय श्लोक है, तो हम नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।